ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने निजी क्षेत्र से रुग्ण उद्योगों को साझेदारी मॉडल के तहत पुनः संचालित करने के लिए ठोस प्रस्ताव लाने का किया आग्रह। बांके जिले के विभिन्न नगरपालिकाओं में फाइलेरिया के संक्रमित मामले सामने आने के बाद सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम शुरू करने की जा रही है तैयारी। म्यागदी में अब तक 139 सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण हो चुका है पूरा, और हमास अगर बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को नहीं छोड़ता है तो इसराइल के साथ उसके युद्ध विराम समझौते को रद्द कर देना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में मीडिया काउंसिल विधेयक 2080 टेबल किया गया। आज ही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई दूसरी बैठक में राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न हुए मीडिया काउंसिल विधेयक 2081 को राष्ट्रीय सभा से प्राप्त संदेश के साथ टेबल किया गया। बैठक में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने निकासी पैठारी नियमन विधेयक 2081 पेश किया। इससे पहले आज की पहली बैठक में प्रतिपक्षी दल के सांसदों ने सदन नियम के विपरीत चलने का आरोप लगाते हुए अवरोध के बाद 15 मिनट के लिए बैठक स्थगित की गई थी। बैठक में सांसदों ने समसामयिक राजनीतिक, विकास निर्माण, सड़क पूर्वाधार विकास आदि विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में सांसदों ने बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य विकास पूर्वाधारों के पुनर्निर्माण पर जोर देने, किसानों को सहज रूप से कृषि उर्वरक उपलब्ध कराने, भ्रष्टाचार नियंत्रण करने, काठमांडू पत्रिका के भीतर कवाड़ा व्यवसाय को कानून के अनुसार व्यवस्थित करने आदि की मांग की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक फागुन 4 गते मंगलवार को दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रुग्ण उद्योगों को साझेदारी मॉडल के तहत पुनः संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र को ठोस प्रस्ताव लाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में आज आयोजित उद्योग वाणिज्य प्रोत्साहन संवाद परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के लिए तैयार है, और यदि पुनः संचालन के लिए ठोस प्रस्ताव है तो उसे जल्द से जल्द लाया जाए। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि कानूनी और नियामक क्षेत्रों में सुविधा जनक वातावरण बनाने और आवश्यक संशोधन करने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार निजी क्षेत्र का समर्थन करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा शुल्क और राजस्व में अनियमितताएं पाई गई हैं और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल पूंजी से विकास नहीं होता, बल्कि देश के विकास के लिए संपत्ति अर्जित करने की सोच के साथ काम करना होगा। बैठक में परिषद के सदस्यों ने सार्वजनिक निजी भागीदारी में सहयोग और समन्वय, सार्वजनिक संस्थानों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने, व्यापार घाटा कम करने, अध्यादेशों के क्रियान्वयन, निर्माण व्यवसाय और परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने जैसे विषयों पर सुझाव दिए। इसके अलावा बैठक में सरकार द्वारा किए गए आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों, अध्यादेश के माध्यम से 29 कानूनों में किए गए संशोधन और उनके सकारात्मक प्रभाव, विकास निर्माण में प्रगति, स्टार्टअप और व्यापार सुविधा के लिए की गई पहलों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं और समाधानों पर चर्चा की गई और उत्पादन, पूर्वाधार, निर्यात, शासकीय और प्रशासकीय क्षेत्रों में परिषद के तहत समितियों का गठन करने का निर्णय किया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बताया कि इसी माह 22 गति से शुरू हुए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एचपीवी टीकाकरण अभियान उत्साह के साथ संचालित हो रहा है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से 10 लाख से अधिक किशोरियों ने टीका लगवाने में सफलता प्राप्त की है, जिसके लिए उन्होंने सभी संस्थाओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ओली ने टीकाकरण अभियान में शामिल प्रशासकों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वयंसेवकों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थानों को धन्यवाद देते हुए आगामी फागुन 6 गति तक चलने वाले इस अभियान में और अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है और इसे सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। सरकार ने सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के संबंध में अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत संहिता सबलीकरण और राष्ट्रीय हित समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने मंत्रालय के सहसचिव जितेंद्र अवस्नेत की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय अध्ययन समिति गठित करने की जानकारी दी। मंत्री भंडारी ने बताया कि समिति को सीमेंट उत्पादन और लागत का तुलनात्मक अध्ययन कर 3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री भंडारी ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाले हेटौरा सीमेंट और उदयपुर सीमेंट को भी घाटे में सीमेंट बेचने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाएगी। सांसदों ने कहा कि बिजली शुल्क नहीं चुकाने वाले सीमेंट उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सीमेंट उद्योगों की नियमित निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से सीमेंट सहित उपभोक्ता सामानों की कीमतों पर नियंत्रण लगाने का आग्रह किया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। म्याग्दी में 139 सस्पेंशन ब्रिजों का निर्माण किया गया है। गैर सरकारी संस्था मिलन म्याग्दी के तकनीकी सहयोग और विभिन्न संस्थानों के वित्तीय निवेश से ग्रामीण इलाकों की नदियों और खोलों पर तथा दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए 139 सस्पेंशन पुलों का निर्माण किया गया है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि वर्तमान सरकार को गिराने के खेल में माओवादी नहीं है। आज सुर्खेत के वीरेंद्रनगर में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि माओवादी का ध्यान अभी सरकार की बजाय भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हुए जनजीविका और जन सरोकार के विषय पर केन्द्रित है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने थाईलैंड के लिए आवासीय राजदूत धन बहादुर वली को जनवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र लाओस के लिए गैर आवासीय राजदूत की जिम्मेदारी भी सौंपी है। नेपाल के संविधान के तहत मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने वली को आज नियुक्त किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दल ने भूमि संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधन करने के लिए बने अध्यादेश के प्रति असंतुष्टि व्यक्त करते हुए अध्यादेश के विपक्ष में मतदान करने का निर्णय किया है। आज सिंह दरबार स्थित संसदीय दल के कार्यालय में हुई संसदीय दल की बैठक में भूमि संबंधी अध्यादेश दीर्घकालीन रूप में देश और समग्र राष्ट्र के हित विपरीत होने की बात बताते हुए विपक्ष में मतदान करने का निर्णय किया गया। कैलाली की घोड़ा घोड़ी नगर पालिका में गरीब परिवारों के लिए 12 सुरक्षित आवास बनाकर सीमांत समुदाय को सौंपे गए हैं। नगर पालिका के सभी वार्डो में सीमांत वर्ग के लिए सुरक्षित आवास बनाने की योजना के तहत वार्ड नंबर 4 सिमथरी में 6 और वार्ड नंबर 9 गोदनी में 6 आवास बनाए गए हैं। नेपाल भ्रष्टाचार होने वाले देशों में से 107वें स्थान पर है। ये जानकारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साझा की है। ट्रांसपेरेंसी द्वारा आज सार्वजनिक किए गए 180 देश सम्मिलित भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक अनुसार नेपाल ने 100 में से 34 अंक प्राप्त किए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल के अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्मा ने बताया कि नतीजा ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध नेपाल में प्रभावकारी कदम उठाना जरूरी है। बता दें कि डेनमार्क पिछले 7 साल से लगातार 90 अंक प्राप्त करके सबसे कम भ्रष्टाचार होने वाले देश के रूप में है। वहीं 8 अंक के साथ सबसे अधिक भ्रष्टाचार होने वाले देश दक्षिण सूडान है। बांके जिले की विभिन्न पालिकाओं में फाइलेरिया रोग के संक्रमित पाए गए हैं। नेपालगंज उपमहानगर पालिका, डुडुआ गांव पालिका, नरेनापुर गांव पालिका और बैजनाथ गांव पालिका के वार्ड नंबर 4 में संक्रमित पाए गए हैं। ये बात इपीडीमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकृत रामकुमार महतो ने बताई। उन्होंने बताया कि नेपाल में अब सिर्फ बांके जिले में ही दवा खिलाने की जरूरत है, इसलिए 14वीं बार आम दवा सेवन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। काठमांडू के कमल पोखरी स्थित एक नाश्ते की दुकान में पिछले सप्ताह गैस लीक होने से हुई आगलगी की घटना में घायल हुए दो लोगों में से दोनों की मौत हो गई है। मरने वालों में हेटौरा के 18 वर्षीय रवीन राय और उदयपुर के 25 वर्षीय भीम बहादुर घरे शामिल है। ये जानकारी जिला प्रहरी परिसर काठमांड के प्रवक्ता अपील राज पोहरा ने दी। बता दें कि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास अगर बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को नहीं छोड़ता है तो इसराइल के साथ उसके युद्ध विराम समझौते को रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक या दो नहीं सभी बंधकों की रिहाई हो। हमास ने सोमवार को कहा था कि वो बंधकों की रिहाई रोक रहा है क्योंकि इसराइल युद्ध विराम समझौता का उल्लंघन कर रहा है। हमास ने अपने बयान में कहा था पिछले 3 हफ्ते में हमारे नेतृत्व ने देखा कि दुश्मन बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है और समझौते की शर्त को नहीं मान रहा है। हमास के बयान पर इसराइल ने कहा था कि ये बंधकों को रिहा न करना समझौते का उल्लंघन है। हमास और इसराइल के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता 19 जनवरी को लागू हुआ था। इसके बाद से हमास ने 16 इसराइली और 5 थाई बंधकों को छोड़ा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने निजी क्षेत्र से रुग्ण उद्योगों को साझेदारी मॉडल के तहत पुनः संचालित करने के लिए ठोस प्रस्ताव लाने का किया आग्रह। बांके जिले के विभिन्न नगरपालिकाओं में फाइलेरिया के संक्रमित मामले सामने आने के बाद सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम शुरू करने की जा रही है तैयारी। मैगदी में अब तक 139 सस्पेंशन ब्रिजों का निर्माण हो चुका है पूरा और हमास अगर बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को नहीं छोड़ता है तो इसराइल के साथ उसके युद्ध विराम समझौते को रद्द कर देना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।